सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय हा देवी काकु भरगद गदयाद्य वाचा जाते निपत्त भूरि जन्मवत उद्घटारती अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्देकचण्डीवरं जड्डञ्जागुदरुचिसंविदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिदशद्रामाभिरामं राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेन् भक्त्याभिन्नापराधलक्ष्यै चित्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै पितामयी त्वं शरणं प्रपन्न वन्दे नमस्ते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं तवैवास्मि तवैवास्मि न जिमामि त्वया इति देव्याय राधे त्वं नयनां च स्वनियम दशम का अंतिम श्लोक दशम से वो आरम्भ कर भजन भाष्य किंतु उसमें एक छूट किया था तो उसका संक्षेप में वर्णन करते बस रघुनाथ दास गोस्वामी की प्रार्थना में हम लोगों ने सुना कि उनका एक नौवां नियम यह है कि व्रत के में उत्पन्न खीर और उससे जो तैयार होते हैं चीज़ें मट्ठा इत्यादि बस इन्हीं को वो ग्रहण करें और ठंड से निवारण के लिए अपने अंगों के आच्छादन के लिए वसन भी वहीं का लेंगे। ब्रज में उत्पन्न जो वसन हैं वस्त्र हैं बस उन्हीं को ग्रहण करें। पदार्थ और जितने भी पदार्थ हमको जीवन निर्वाह करने के लिए आवश्यक है वो ब्रज में ही उत्पन्न होने चाहिए। और अदम्भम दम्भ को सब प्रकार का माने प्राकृत जितने प्रकार के अभिमान हैं ये सबको छोड़कर नियम पूर्वक राधा कुंड में ईशा कुंड में ही हम निवास करें और यदि मैं मर जाऊं तो वहीं पर मरो राधा कुंड का जहां संगम है वहीं पर मरो और उस समय में हमारे सामने जी गोस्वामी इत्यादि लोग इसलिए कि मरते समय में स्मरण साझी नहीं होता है तो जी गोस्वामी जी साझी में स्मरण करा दें किंतु ये मरेंगे भी नहीं ऐसी स्थिति भी नहीं वो ऐसे ही अप्रकट हो जाए इस लीला में दिखाई नहीं पड़े और उस लीला में पहुंच जाए अंतर ध्यान हो जाए। तो अभी साधकों के लिए एक ऐसा भाव चाहिए एकांति इसको दिखलाया है कोई भी चीज व्यवहार की हो प्रयोग अंतिम में वो कहते हैं स्फुरल लीला लक्ष्मी स्मरण लक्षी लक्ष्मी ब्रज विजयी लक्षी भर लौसत बपुह गंधर्वा स्मरणिकर दिव्या दिव्य दिग्विभू दिग् अरिभृतो विधास्ये कुंजादौ विविध परि रविवास्या रभसत रभसम रहस्य रूपाख्य प्रियतम जनश्यैव च चरमः। पूर्व लक्ष्मी के भी वो लक्ष्मी है, राधा जी कैसी हैं, सर्व लक्ष्मी है, ये लक्ष्मियों के भी मूल हैं, इन समस्त लक्ष्मियों की भी महालक्ष्मी स्वरूप गोपियां हैं, और उन गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ उन लक्ष्मियों में भी परम लक्ष्मी स्वरूपा श्री महाधिराज का जी है। तो मैं श्री रूप गोस्वामी के अनुगत्य में प्रकट लीला में रूप गोस्वामी, अप्रकट लीला में वही रूप मंजरी, उनके अनुगत्य में निखिल रमाओं के भी रमा स्वरूप परम सौंदर्यवती ब्रजरामा गणों के भी लक्ष्मी से भी परम लक्ष्मी स्वरूप सत्यभामा रुक्मिणी इत्यादि, और उन लक्ष्मियों से भी श्रेष्ठ ब्रज की गोपियां लक्ष्मी, और उन लक्ष्मियों में भी श्रीमती राधिका जी और सबसे सुंदर। कुछ हिला है, तो उन सबकी शोभा को विजय करने वाली श्रीमती राधिका के सहित निखिल कंदर्प के विजयी गिरधारी श्री कृष्ण के रहस्यमय निर्जन निकुंज सेवा की अभिलाषा करती हूँ रूपमंजरी के अधीन। पंचम ज्ञान हम लोगों ने चौथा तक समाप्त किया था, चौथा तक हम लोगों ने कर चतुर्थ ज्ञान तक कर दिया था, अब हम साधन भजन में हैं। ये भी साधन भजन जो कर रहे हैं बहुत उन्नत, चतुर्थ ज्ञान में पहुंच गए हैं। और चतुर्थ ज्ञान का भजन क्या है बताओ तुम, चतुर्थ ज्ञान हाँ क्या है, क्या बोलते पारे बोलो, अरे रुचि ने आसक्ति हो,
रुचि महाराज पंचमे आसक्ति हो,
पंचमे तो
पंचम
पंचम पंचम आसक्ति श्रद्धा
श्रद्धा प्रथम
इसके बाद में
भजन साधु संग अनर्थ निवृत्ति
सर निष्ठा रुचि और पंचम में आसक्ति, यह आसक्ति भी बहुत कठिन है। यूं तो श्रद्धा भी दुर्लभ है, लौकिक की श्रद्धा हो सकती है, किंतु परमात्मा की श्रद्धा निष्ठा बहुत ही उन्नत है, बुद्धि स्थिर हो जाती है, अनर्थ प्राय दूर होने लगते हैं। उस समय ये व्यक्ति क्या कर रहा है, वो व्यक्ति कर रहा है, उसकी नजर ही नहीं जाएगी, भजन में तत्पर रहेगा, श्रवण कीर्तन में तत्पर रहेगा, उस समय अपने आप जब आसक्ति होगी निष्ठा के बाद में रुचि आसक्ति, उस समय में वो श्लोक अपने आप उसको आ जाएगा ये मैं कृष्ण दास हूँ। और सुख और दुख हमारे पूर्व कर्मों के द्वारा ये प्राप्त है, इसको भोग लेना चाहिए, ये भोगना भी पड़ेगा। और भगवान चाहें तो भगवान नाम के प्रभाव से, श्रवण के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से वो दूर हो जाएगा, वो कर्म फल नहीं आएगा, तो उसको भगवान की कृपा मान करके उसको सह लेना है। भगवान की कृपा मान करके, कैसी कृपा मानेंगे? पहले बतलाया था कि साधक ये देखता है, शास्त्रों में देखता है, भगवान नाम करने से निष्ठा पूर्वक यदि कोई नाम करे, रुचि के साथ में, आसक्ति के सहित में नाम करता है, तो वो सब कुछ दूर हो जाता है, अनर्थ अपराध सब कुछ दूर हो जाता है। पहली स्थिति में क्लेश अग्नि भक्ति है ना, तो इसलिए क्लेश में सब उसके दूर हो जाता है, पाप अपराध पूर्व जन्मों के कर्मों का फल दुख तो सब कुछ दूर हो जाता है। इसलिए हम नाम कर रहे हैं होगा, और यदि नहीं भी आए तो हम अपने कर्मों का फल समझ करके भोग लेंगे, और नहीं तो भगवान हमको ऐसा करने के लिए, दीन हीन बनाने के लिए ऐसा किया है, इसलिए उसको भी झेल लेने के लिए, और झेल करके निरंतर हृदवाक बहुवी विदधन नमस्ते जीवित जह मुक्ति पदे सदाय भाग सुसुमिक्षमान। सुसुमिक्ष माने क्या है? समीक्षा करनी चाहिए, सुसमीक्षा विवेचन करना चाहिए, विचार करके ये देखना चाहिए, चित्त घबराए नहीं, और उनको विचार करके देखना चाहिए। अच्छा, ये द्रौपदी के ऊपर में विपत्ति पड़ी थी, उसका ये कौन कर्मों का फल था? कर्मों का फल नहीं था, भगवान ने जगत में भक्तों का आदर्श और द्रौपदी जी की प्रसिद्धि कराने के लिए ऐसा कर रखा। भगवान तो इच्छा करने से वो साड़ी का छोर छूता और मर जाता, ऐसा भी तो हो जाता, इसलिए अपने भक्तों को अर्थ युक्त बनाने के लिए, और उस समय केवल हमारा स्मरण करें और तब उनका दुख दूर हो जाता है, ये सहज भाव से दिखलाने के लिए, या और कोई भी उसकी लज्जा नहीं रख सकता, तो भगवान उस समय में उसकी प्रार्थना सुन करके झट उसको दुख करें, इस चीज को प्रदर्शन करना था, दिखलाना था, इसलिए उन्होंने झट कर कपड़े बंद करके, और कितना 10,000 हाथियों का बलवाला दुशासन की भुजाएं थक गई, खाते 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 थक गई, पहले जो दांत निपुर रहे थे ना, हंस रहे थे, उनके पसीने आ गए। यहाँ दुर्योधन अपना जंगा खाली करके कपड़ों से तैयार बैठा था, बस बैठा ही रह गया, देखा ये क्या हो रहा है। वो तो भीष्म पितामह दी और धृतराष्ट्र इत्यादि ने, गंधारी ने कहा जल्दी करो ना, तो अब ये सब प्रलय होने वाला, बस तब वो छोड़ दिया बात। इसलिए द्रौपदी जी पांडवों के ऊपर में जो कष्ट आए थे उन लोगों ने झेला कि नहीं? सबको झेल दिया, हंसते भी झेला, दुख से भी झेला, किंतु झेला सब। जब सिद्ध भक्तों में ऐसा देखा जाता है तो हम लोगों को तो जरूर झेल लेना चाहिए, दुख आएंगे और जरूर आएंगे, चाहे कर्मों के फल से आए, चाहे भगवान हमको दीनता देने के लिए, हम लोग बड़े अक्खड़ स्वभाव के हैं, हम समझते हैं कि हम ही सब कुछ करने वाले हैं, हम दुरुस्त कर देंगे जगत को, तो आज तक तो कोई जगत को दुरुस्त नहीं कर सका, अपने ही दुरुस्त सब हो। कीचक को देखो, दुर्योधन को देखो, कर्ण को देखो, दुशासन को देखो, और इसके बाद में हिटलर भी आया, और सभी लोगों को देखा जाए। इसलिए लोगों का अभिमान को दूर करके उनको दीनहीन रह करके भगवान का भजन करने के लिए, इसलिए विपाकम वो अपने कृत्य को उत्पन्न हुए हैं विपाक, अथवा हितवा भगवान की उसको दया मान करके तत्ते अनुकंपम
तत्ते, ये तुम्हारी, तुम्हारी माने कृष्ण के लिए प्रार्थना कौन कर रहा है? ब्रह्मा जी, ये आपकी कृपा, ये सब। इसलिए विधवा बहुवी विदधन नमस्ते, ऐसा समझ करके, विचार करके, स्थिर बुद्धि से और उदाहरणों को देख करके स्थिर कर दिया। जब ऐसा करके अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे तो और सब का भार उनके ऊपर में हो जाए, वो ग्रहण कर ले। मान लिया कि हमने एक गाय को बेच दिया एक व्यक्ति के हाथ, अब उस गैया को कोई मार रहा है तो वो जो खरीद लिया है वो क्या करेगा? गैया को पुकारना पड़ेगा जैसे हम हमारी रक्षा करो, आखिर गैया की अपनी आप वो रक्षा करिए मेरी है। वैसे ही जब तक हम लोग आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में नहीं करते हैं तब तक हम लोग विषण रहते हैं, चिंतित रहते हैं, बड़ा नींद नहीं आएगी, पांच गोली खाने पर भी नींद नहीं, छटपट 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 करते। और जिस समय में आत्मनिवेदन तुहा पदे करी कोई नहीं परम सुखी, दुख दूर गेलो चिंता ना रही, जितनी भी विपत्ति आए क्लेश जीवन में आए चिंता का विषय आए झगड़ा रहे खूब घबरा, उस समय में कहो प्रभु मैंने आपके चरणों में, आप तो जरूर हैं, आप शरणागतों की भी रक्षा करते हैं, इसलिए मैं निश्चिंत हो गया, अब मेरी लज्जा रहेगी तो ठीक है, नहीं तो आपकी रहेगी, अन्य तो आपकी लज्जा जाएगी, बस निश्चिंत होकर के बैठ जाओ, जो कुछ होगा देखे वो प्रभु देखे। तो क्या वो लिखा है ना उपसन्नाना, जो माने ऐसे शरणागत हो गए हैं, आजकल के भगवान रक्षा नहीं करते, रुद्धा गुहायन कि मजतो नो उपसन्ना। क्या आजकल यदि घर से कोई निकाल दिया, हम निकल भी गए तो कपड़े पहनने के लिए नहीं मिलेंगे? मुद्रा घाटी में घर घर जो लोग फेंक देते हैं, फेंक नहीं देते हैं कपड़े पुराने, पहन लूंगा क्या? क्या पत्ते और फूल आजकल वृक्षों में नहीं लगते? तो वहां से लेकर के खा लूंगा। क्या पहाड़ों में कंदराएं नहीं होती? क्या पेड़ में छाया नहीं होती? क्या नदियों का जल, सब नदियों का जल सूख गया है, ये पानी नहीं मिलेगा? क्या भगवान पहले जो दया करते थे अब अपने शरणागतों पर दया करना भूल गए? मैं किस लिए विषय लोगों के यहाँ जाऊं, दास निकोर करके कहूं
कस्मात भजन जी कवयो
धन में, जो दुर्मदान व्यक्ति हैं उनके पास में दास निकोर करके हाथ जोड़ करके किस लिए जाए? हमारी रक्षा करो, ये जगत के लोग हमारी किसी भी विषय में रक्षा कर सकते हैं, रक्षा करने वाले वही है, इसलिए क्यों नहीं हम उनके चरणों में अपने को छोड़ दें और निश्चिंत हो जाए। गुरु जी भी हैं, वैष्णव लोग भी हैं, बड़े समर्थवान हैं, इसलिए आत्मनिवेदन वहां पर तुम्हारे चरणों में आत्मनिवेदन करके वही न परम सुखी, दुख दूर गया एक सेकंड में बस मिला। वो वेश्या थी, सब समय परपुरुषों की चिंता करती करती, ये आएगा हमको पैसा देगा, ये आएगा पैसा देगा, करते 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 आधी रात तक जगती रही, क्या दो फेंक दिया, जरूरत नहीं, बस कबाड़ बंद करके अपने कपड़े उतार लिए और आराम के साथ में। एक मिनट भी जगत से निराश होकर तो उसमें तो कुछ गड़बड़ी भी है, किंतु शरणागत होने पर भगवान का सचमुच में ये कह करके देख लो जो कुछ होगा हम अपने शरीर को छोड़ दिया। द्रौपदी ने छोड़ दिया ना अपना, जब तक वो चेष्टा करती रही तब तक कुछ नहीं हुआ, और जब अपने चेष्टा छोड़ करके एकदम संपूर्ण रूप से उनके ऊपर में छोड़ दिया, बस एक सेकंड की देरी नहीं है। उसी तरह से देख लो, प्रतीक्षा करके देखो, अनुभव करके देखो, ना एक बार कोई परीक्षा करके देख लो, ये बात ठीक होती है, नहीं तो ये जगत में जीना बड़ा भारी मुश्किल हो जाएगा। विशेष करके भक्ति राज्य में कंटक, क्या कंटक, कांटे कोटी कोटी कंटक हैं, वो कांटे चारों तरफ से आएंगे, किंतु जब भगवान के प्रति छोड़ दो ये जिस समय में ध्रुव जी अथवा नारद जी घर छोड़ करके चले गए भजन करने के लिए गभीर आरण्य में सांप बिच्छू डंस बाघ सुअर कितने तरह के जानवर भरे पड़े हैं, बस भगवान को ऐसा कर दिया कि मैं भगवान की गोदी में बैठ करके भजन कर रहा हूं, बस छोड़ दिया, बस कोई सामने पास में नहीं पड़ता और भजन करके उसकी सिद्धि। इसलिए सबसे पहले यही कहा गया कि शरणागत होना सीखो। दूसरी बात, दंड देने वाला कौन है? दंड कोई मनुष्य किसी मनुष्य को दंड दे सकता है? दंड देने वाला विश्व का कोई भी व्यक्ति नहीं है, किसी को कोई दंड नहीं। दंड देने वाले एकमात्र उनकी इच्छा नहीं होगी तो कौन क्या दंड देगा? इसलिए चित्त को चंचल करके हरि भजन में बाधा क्यों डाले? इसलिए निश्चिंत होकर आता रहे और उनके चरणों में अपने को छोड़ करके शरणागत होकर के खूब आनंद चित्त से भगवान का भजन। प्रहलाद महाराज जी को देखो, हम प्रहलाद महाराज क्यों नहीं है किंतु उन्हीं की परंपरा में है। प्रहलाद महाराज को जो कुछ भी दुख हुआ उन्होंने छोड़ दिया था अपने को, भगवान को गरज पड़ी समुद्र में डूबते हुए उनको बचा करके ले आए, पहाड़ों से गिराया तो अपनी गोदी में ले लिया, विष खाया तो विष प्रभु ने ही दे दिया, आग में उसको जलाया तो आग ही नहीं जली, इस तरह से भगवान रक्षा करता है। इसलिए शास्त्रों की बात दुखी नहीं है, इसलिए शरणागत पहले हो जाए। और ये उसी तरह से होते हुए हृत बात बपु भी विदधन नमस्ते, अपने हृदय से, हृदय में ये भावना, हृदय में मन में ये भावना रहे और उसी को मैं आपके शरणागत भगवान के लिए मेरा नमस्कार, उनको उनके शरणागत होना। और वाणी के द्वारा भी उसको बोल मैं आपका हूं, इसी प्रकार से कहता रहे वाणी के द्वारा भी, मन में भी ऐसा सुन। और बपु भी उनको एकदम साष्टांग प्रणाम करके अपने को अर्पित कर, इस तरह से जो करेगा जीवित जम मुक्ति पदे दाय भाग, जैसे जीवित रहना ही दाय में उसका भाग है। माने क्या, एक लड़का पिता को कोई लड़का नहीं था, वो अपुत्र थे, उनकी बहुत बड़ी संपत्ति थी, उनको एक अंत में बच्चा पैदा हुआ लड़का, वो लड़का के लिए रजिस्ट्री करने की अथवा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, पिता का उत्तराधिकारी है। यदि वो जीवित रहा, पिता के मरने तक वो जीवित रहा, वो उत्तराधिकारी उसका अपने आप हो जाएगा, यदि बीच में मर गया तो खत्म उत्तराधिकार। ऐसे यदि भक्ति करता रहा कोई, ऐसे समझ करके भगवान का चरणों को नहीं छोड़े और तन मन वचन से इसी प्रकार जैसा आता है भगवान का भजन करता रहा कोई, तो मुक्ति का अधिकारी हो, मुक्ति पदे, मुक्ति के पद में उसका अधिकार होता है। अर्थात मुक्ति के पद में माने, मुक्ति माने भगवान के चरण को, की सेवा को मुक्ति कर, विष्णुआंग लाभ अथवा मुक्ति और पद दोनों में,
मुक्ति जिनके पद है,
मुक्ति और पद, अच्छा तो मुक्ति जिनके पद में है, अर्थात मुक्ति किसके पद में है? भक्ति के पद में है, भक्ति के चरण में मुक्ति पहले है। इसलिए मुक्ति पदे अर्थात जिनके चरण में, अर्थात मुक्ति के, भक्ति के आभास से ही मुक्ति हो जाता है, ये तात्पर्य। तो मुक्ति है जिसके पद में, वो भक्ति वो अनायास ही प्राप्त हो जाती है, उसका उत्तराधिकारी उसको मिल जाता है। किंतु यदि अपराध किया और भक्ति से चूक हो गया तो नहीं होगा बीच में। अथवा मुक्ति एवं पदे दाय भाग, मुक्ति में भी तो उसका अधिकार होगा ही, साथ साथ में पद में, पद मैंने भगवान का जो धाम है, भगवान का जहां पर भगवान की लीलाएं हो रही है उसमें प्रवेश करने का, उसमें सेवा प्राप्ति का अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए मुक्ति उसका यदि भक्ति से च्युत नहीं हो। अर्थात ये जो भाव कर रहा है, ये अनुकंपाम और अपने कर्म फलों को भोग करता हुआ, या उसमें ये भगवान की कृपा से ही हमको ऐसा मिला। जीवन धारण करने के लिए तो कुछ चाहिए। यदि भजन करते करते यदि मुक्ति हो गई, शरीर ने प्रारब्ध कर्म नहीं रहा, तो भजन कैसे करेगा। इसलिए भगवान कुछ प्रारब्ध कर्म उसमें अपने तरफ से जोड़ देते हैं, मुक्ति नहीं देते, नहीं तो मुक्ति हो जाएगा तो संसार से चला जाएगा, फिर साधन भजन होगा नहीं। इसलिए साधन भजन करने के लिए उन अपने तरफ से कुछ ग्रेस मार्क दे करके कुछ प्रारब्ध कर्म जोड़ दिया, और जोड़ करके उसको और कुछ जीवन दान करा देते हैं, जिससे कि वो भजन की स्थिति हो। यहाँ नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, दूसरे जन्म में ले जाएंगे, तीसरे जन्म में ले जाएंगे, चौथे जन्म में ले जाएंगे। यहाँ तक कि जिस ब्रह्मांड में लीला चल रही है, जब लीला खत्म हो गई है, उनके परिकर लोग हैं उस समय, जैसे हम लोगों का हुआ, अभी तो मात्र 400 वर्ष बीता है, हम लोगों का जन्म दे दिया और उनके भक्तों का संग कुछ दे दिया। अब इसमें जरा परिपक्व हो जाएगा उनके संग में, तो अब वो क्या कर देंगे, महाप्रभु जी की को तो नहीं देख सकेगा, किंतु रूप रघुनाथ और इन लोगों को देख सकेगा, नहीं इन लोगों की कृपा। और इसके बाद में क्या, दूसरे ब्रह्मांड में फिर जन्म होगा तो वहां महाप्रभु जी की लीला चल रही है, उसमें परिपक्व जब हो जाएगा तो जहां पर कृष्ण की लीला चल रही है बस वहां पर अपने सिद्ध से, फिर जब वहां का पूरा हो जाएगा तो गोलोक वृंदावन में ऐसे ये सब क्रम विकास है। दुख भोग करी निज कृत कर्म फले, काय मने वाक्य तव चरण कमले, भक्ति करी काटे काल तब कृपा आसे, मुक्ति पद तव पद पाई अनजान। इसी की उन्होंने व्याख्या, इस प्रकार से भजन करते 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 आसक्ति से जब हृदय एकदम बिल्कुल पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाता है, तो शुद्ध सत्व उसमें, तब तक कोई चिंता नहीं, तब तक अनायास ही सब कुछ होने लग जाएगा। इच्छतु अच्युतांघ्रिम भजतोनुवृत्त्या भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध भवन्ति वै भागवतस्य राजन ततः परां शान्तिमुपैति दिव्यम्। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में ये नारद ऋषि और वसुदेव जी में ये बातें चल रही हैं, और उन्होंने नव जोगेंद्र उपाख्यान, कहीं से नव जोगेंद्र घूमते 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 महाराज नेमी के दरबार में, पहले बात हुई कृष्ण दर्शन की लालसा से चित्त स्थिर करके द्वारका में आएंगे तो चित्त स्थिर हो जाएगा और कृष्ण की लीला कथा सब सुन सकेंगे, इसलिए वहां पर नारद ऋषि आए। और जब हमें भ्रमण करेंगे तो उनका पीछा वो उनका अभिसंपात दक्ष दक्ष का अभिसंपात पीछा करता है, इसलिए जाएंगे वो गोदोहन काल से अतिरिक्त रह नहीं सकते, गाय भी जाती है बस उतना ही तक एक जगह रहे, अधिक उपदेश किसी को नहीं देंगे। इस तरह से संसार में भ्रमण करते हैं, और जब कृष्ण की दर्शन की लालसा होती और चित्त स्थिर होकर के वहां पर कुछ दिन ठहरेंगे तो द्वारका में जाते, तो द्वारका में किस लिए जाएंगे, इसलिए जाते हैं कृष्ण की भुजाओं के द्वारा वो रक्षित है, वहां पर माया नहीं आ सकती। गोविंद भुज गुप्तायान दारावत्ता पुनः आवासित नारद्विघ्न कृष्ण दर्शन तो वो नर्द, इसलिए अपने मन को स्थिर करके वहां पर कृष्ण का दर्शन करेंगे, माया वहां पर नहीं पहुंच सकती है, जहां पर की कृष्ण की शक्ति है, उनकी भुजाएं मैंने क्या शक्ति, तो वहां जहां उनकी भुजाएं हैं उससे धाम रक्षित है। ये मथुरा धाम भी कृष्ण की भुजाओं से ही रक्षित है, इसलिए ये ब्रज भी वैसा ही है, माया का प्रवेश नहीं है। किंतु यदि हम माया का प्रवेश करा लेते हैं तो वो दूसरी बात, हम करा ले तो वो दूसरी बात, इसलिए वो नारद जी वहां पर जाते थे। जब वहां गए तो वहां पर स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा चल रहा था, ओम
गुरवे स्वाहा,
या दूसरा स्वाहा ओम रुद्राय स्वाहा, ओम महायोगिन्ये स्वाहा, ये सब चीज चल रहा था जैसा लौकिक रीति है। तो नारद जी को ऊपर से एक प्रकाश निकला और प्रकाश क्रमशः पृथ्वी की तरफ में आने लगा। लोगों ने कहा ये दूसरा सूर्य आ रहा है या सूर्य का कोई टुकड़ा कट करके नीचे गिरने लग गया। सब लोग आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे, स्वाहा कर रहे हैं देख रहे हैं ऊपर, जैसे हम लोग पाठ सुन रहे हैं उधर अंदर देखते हैं, ऐसे ही देखने लगे। तो लोग देखने लगे, इतने में धीरे धीरे दिखा अरे भाई वो प्रकाश के अंदर में कुछ है। थोड़ी देर के बाद में देखा जो खड़ा पहने नारद ऋषि जी भूमि तल पर उतरे। बस सब लोग प्रणाम किया, बस देव जी ने कहा बस करो यज्ञ अब जरूरत नहीं, यज्ञ करने का फल ही यहाँ पर उपस्थित हो गया, संत आ गया, भगवान के प्रिय संत आ गए, अब यज्ञ की जरूरत नहीं। कृष्ण वहां बैठे हैं किंतु कृष्ण को यज्ञ का फल यज्ञेश्वर उनको नहीं समझते, किंतु नारद जी को देखो समझते हैं। भगवान से भी विशेषता उनके भक्तों का, भगवान नहीं कहते जी मैं भगवान हूं तुम ये करो वो करो वो करो, उन्होंने मना नहीं किया, किंतु नारद जी आते हैं बस वसुदेव जी के अंदर में आई यज्ञ बोलो कहे ओ ऋतिकों सब ऋतिकों को बुलाता है जब यज्ञ बंद कर दो, इस यज्ञ से हम लोगों का अंतर और बाहर दोनों काला हो गया किंतु अभी तक चित्त शुद्धि नहीं हुई, अब उसका फल ये आ गया, इसके फल के द्वारा ही हमारी यज्ञ की समाप्ति हो जाएगी और उसका फल मिल जाएगा। सब लोग उनको प्रणाम किया और उनको घेर करके बैठ गया और उसमें उन्होंने प्रश्न किया, प्रभु मैंने भगवान को अपने पुत्र के लिए आराधना के लिए पुत्र के रूप में हमारे लिए आया, हमने इसलिए आराधना नहीं की मैं भूल गया था मोहित हो गया माया के द्वारा, इसलिए मैंने कहा कि हे प्रभु आप हमारे पुत्र के रूप में पधारे, उनसे मुक्ति हमने मांगा ही नहीं, आप देखते हैं कि उनको होकर के भी हमारी मुक्ति तो हुई नहीं, तो इस विषय में आपकी कृपा चाहता हूँ जब हम मुक्ति ये संसार से छुटकारा पा करके हमारी मुक्ति कैसे हो। नारद जी मन ही मन में हंसे करके देखो इसके घर में साक्षात परब्रह्म बैठे हैं और ऐसे अनुभूति की तरफ में ऐसा जो कुछ नहीं समझते हैं अज्ञानी की भांति ये प्रश्न कर रहे हैं, बतलाओ जैसे हम कोटि कोटि जन्मों में भी वसुदेव जी नहीं हो सकते, हमको ये अधिकार नहीं है कि मैं कृष्ण का पिता बन जाऊं और अपनी भक्ति से इनके ये पिता बने हुए हैं और वो कहते हैं बाबा बाबा पिता पिताजी कहते हैं। अतएव मैं उनके जैसा सौभाग्य और फिर हमसे ये कह रहे हैं कि मैंने मुक्ति के लिए मुक्ति साधारण सीखी, ये हमको भी ठग रहे हैं और इसी बहाने से जगत को शिक्षा दे रहे हैं ये संतों का आदर करना चाहिए और मुक्ति गंदी चीज है वो उन्हीं से कहलाएंगे, ये मुक्ति गंदी चीज है, आप परम महा सौभाग्यवान हैं आप भगवान के पिता स्वरूप, इसलिए उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने इसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हमको कुछ आता जाता नहीं है ना मुझे कुछ अनुभव है, संत लोग ऐसे ही करते हैं दूसरों को ऐसे ठग लेते हैं, हमको न तो अनुभूति है और न मैं ये सब चीजें जानता हूँ, हाँ शास्त्र में एक जगह पढ़ा है बहुत पहले की बात है महाराज नेमी के राज्य में 9 जोगिंद्र लोग गए थे, ये 9 जोगिंद्र कौन कहे कभी हबी अंतरिक्ष पिपलायन प्रबुद्ध पिपलायन भाजन, ये लोग ये 9 नंग धरंग मैं किस जाति का हूं मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं संन्यास ये सब कुछ नहीं, अवधू परमहंस ब्राह्मणों के भी गुरु हैं वो लोग, तो नेमी महाराज ने भी उन्हें से यही, तो उसके उत्तर में एक एक आदमी एक एक प्रश्नों का उत्तर 9 प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया। तो वही यहां पर बतला रहे हैं पहले ऋषि हैं
कभी कभी पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। इति माया से पार कैसे हम जा सकते हैं, शांति कैसे हो सकती है, माया के राज्य में शांति और सुख नहीं, जितना भी जैसे हो, इसलिए उसका उपाय उनको बतला रहे हैं, उसी को भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर कोट कर रहे हैं। इति अच्युत अंग्रिम, इस प्रकार से अच्युत माने श्री कृष्ण जो कभी च्युत नहीं होते हैं किसी भी अपने गुणों से, विशेष करके हम लोगों की किस चीज की जरूरत है, उनका कौन सा गुण, अभी हम लोगों को सौंदर्य माधुर्य की जरूरत नहीं है, उनकी भक्त वत्सलता कृपा की जरूरत, सबसे पहले उनकी करुणा की जरूरत। ऐसे जो अच्युत हैं जो अपनी करुणा से कभी भी विच्युत नहीं होते हैं, ऐसे कृष्ण के चरण कमलों की अंग, चरण कमलों का भजतो अनुवृत्त्या, अनुवृत्ति के साथ में भजन करते हैं, भजन अनुवृत्ति के साथ में, अनुवृत्ति माने क्या है, अर्थात मैं उनका अनुसरण करूंगा इस प्रकार की चित्त वृत्ति के लिए, वृत्ति के साथ में। हम लोग सुनते हैं, अभी हमने बतलाया, हमने कहा भी, न तो हमारे ही यहाँ पर कोई दांत कटा और आप लोगों में से कटा कि नहीं, मैं नहीं जानता, क्या शरणागत होना चाहिए भगवान, और जो शरणागत जन्म हो जाता है उसको कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, क्या होगा, मैं मरूंगा कि क्या होगा, ये कष्ट होगा, ये सबसे ऊपर उठ जाता है, उसकी चिंता नहीं होती, कृष्ण उसकी चिंता करते हैं। इसका नाम है, यदि उसी प्रकार की धारणा बद्धमूल हमारे हृदय में हो जाए तो इसका नाम है अनुवृत्ति। इस वृत्ति के साथ में हमको सुनना चाहिए, कथाओं का कीर्तन भी उसी प्रकार से, तो अनुवृत्ति आने तो यहाँ पर सुना, यहाँ से नीचे जाकर के किसी एक बात कोई बात हुई और उसी के लिए परस्पर झगड़ा हो, सब यहीं पर सीढ़ियों पर ही हम भूल गए या हम हॉल से निकल गए, ऐसा नहीं, अनुवृत्ति एकदम निश्चित रूप में, ऐसा ऐसा ही मैं एकदम देकर के एकदम निश्चित हो जाऊंगा। प्रहलाद महाराज की इसीलिए बात है, उनको मार रहे हैं, उनको काट रहे हैं, विष दे रहे हैं, डंक सांपों से कटवा रहे हैं, कोई चिंता नहीं, राघवी राघवी मारवी जो इच्छा नित्य दास प्रति तुहा बिता, मारो या रक्षा करो ये तुम्हारे ही हाथ में है, अब हमने तो सौंप दिया, सौंपी अच्छी माथा, मैंने माथा अपना सिर आपके चरणों में सौंप दिया, अब मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं। तो उसी तरह से है ना, अनुवृत्ति से यही कृष्ण, ऐसे कृष्ण का जो भजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो भजन भी दो प्रकार, एक साधन और एक सिद्ध, एक वैधि भक्ति के अनुसार में और दूसरा है रणन भक्ति, और उसमें भी तरह तरह के तारतम्य है, अनर्थ युक्त है, अनर्थ रहित है, इसके बाद में प्रीति के सहित है, ये सब तरह तरह की, ये सब तारतम्य उसमें है। सुभक्ति विराग ज्ञान तहां से उपजे, तो उससे क्या होता है, अनुवृत्ति से भजन करते करते, भक्ति माने साधन भक्ति, पहले साधन भक्ति है, फिर जितने परिमाण में साधन भक्ति होती जाएगी उतने परिमाण में विषयों से विरक्ति भी होती चली जाएगी, एक साथ एक ही अनुपात में, यदि भजन करते हैं विरक्ति हुई नहीं संसार से तो समझो कि वो भजन नहीं हुआ, और भगवत प्रभु और भगवान की विषय में अनुभूति बोध उपलब्धि ये भी जरूर होगी, तीनों चीजें साथ साथ में होगी, वो उस समय में उपलब्ध करेगा, ये विपत्ति आई और उससे हमको बहुत हानि होती किंतु भगवान के भजन करने से सहज ही कर दे, उपलब्धि करेगा, इसी विषय में सब विषय में वो उपलब्धि करेगा, इसलिए भक्ति साधन भक्ति साथ साथ में विषयों के प्रति विरक्ति और उपलब्धि, इसी को और एक जगह कहा,
भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्नत चैस्त्रिक एकता। भक्ति मैंने साधन भक्ति करेगा साथ ही साथ में भक्ति परेशानुभव, परेशानुभव परेशानुभव माने भगवान की अनुभूति, उनकी दया हमारे ऊपर तो पद पद पर होती। अभी हम लोग देखते हैं, मैं भी विचार करके देखता हूँ भगवान की कितनी बड़ी दया हम लोगों के ऊपर, न जाने कहाँ जन्म, कहाँ पर किस रूप में जन्म, भवेश में, और किस रूप में संतों की कृपा हो गई, अहैत के रूप में उनकी दया हुई और हमारे मन को मोड़ करके वहां से खींच करके अपने चरणों में संतों ने ले लिया, और धीरे 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 हमको कहा नवदीप धाम में गंगा के तट में जितने भी हम लोग का आश्रम वहां पर हमने को रखा और सब जगह साधुओं का आश्रम। यदि गंगा तट से हटा तो समुद्र के किनारे पहुंच गया जिसमें गंगा नदी मिलती है, और वहां पर से यदि हटाया तो यमुना के किनारे यहां पर रख दिया, मथुरा में लेकर के रख दिया, जहां पर एक दिन रहने से ही भक्ति होती है। इतनी बड़ी भारी भगवान, इतना ही नहीं और लोग भी तो हैं, किंतु सभी लोग जो आदर करते हैं सुनते हैं प्रमाणिक मानने लगे हैं, ये देखो भगवान की कितनी कृपा हुई। जो लोग दुखी हो जाते हैं उनको भी सांत्वना देने की भावना रखती है और सब लोग सांत्वना पाते भी हैं, ये कितनी बड़ी भगवान। अब जमुना को जहां थोड़ा सा जमुना के किनारे और थोड़ा सा आगे बढ़े तो वृंदा बना, ये भगवान की अद्भुत कृपा है, महती कृपा है, पद 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 इस जीवन में मैं उपलब्धि करता हूँ कितने महापुरुषों का संग हुआ जिनका कोई कल्पना नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे महात्मा, ऐसे ऐसे सब महात्माओं का दर्शन। वृंदावन के प्रति एक भावना जगा दी, नाम श्रेष्ठम मनुवपि सती पुत्र मत्र स्वरूपम रूपम तस्याद्रज उरिपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटिं राधा कुंडम गिरिवर महो राधिका माधवासं प्राप्तो जस प्रकृति कृपा। जिनकी बहुत प्रचुर कृपा के फल से आज इन एकादश की द्वादश वस्तुओं में प्रतीत हो गई, उनकी कृपा की अब सोचनी है कब उनकी कृपा होगी। गुरु और मंत्र नाम चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन उनके जो परिकर हैं, चैतन्य महाप्रभु में, फिर राधा कृष्ण के चरणों में, वृंदावन में, वृंदावन से भी नहीं पेट भरा, गिरिराज से भी पेट नहीं भरा, राधा की कृपा चाहिए, इसे नीचे की कोई चीज नहीं चाहिए, बतलाओ ये कितनी बड़ी भारी उनकी कृपा है भगवान। इसलिए ये सबको भगवान के ये समझना चाहिए, सब समय अनुभूति रखो, ऐसे इसका नाम है उपलब्धि। चीजें हैं किंतु उसको उपलब्धि करना, लाभ ग्रेविटेशन, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो तो है ही है, किंतु इसको समझ करके लोगों के साथ में समझा करके और उसका विचार कर देना, ये थोड़ी सी उपलब्धि। इसलिए कहते हैं कि न्यूटन ने इस थ्योरी को बाहर किया, जगत के लोग ऋणी, उस भगवान के ऋणी नहीं है जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण बतलाया बनाया और उसके द्वारा सब पृथ्वी का रोटेशन, सूर्य का रोटेशन सब कुछ चल रहा है, उस भगवान के प्रति हम नहीं है ऋणी, उस न्यूटन के प्रति जो इस थ्योरी को बदला ये ऐसे ऐसे है, तो वो लोग भगवान की कृपा नहीं उपलब्ध, किंतु हम लोग उपलब्ध। प्रत्येक काम में प्रत्येक क्षण में भगवान की कृपा की उपलब्धि, इसी को कहते हैं भगवत प्रबोध। साधन भजन भी अपने आप नहीं होता, अभी हम लोग साधन भजन करेंगे तो मन चंचल इधर उधर घटना छटपट छटपट लोग विघ्न बाधा देंगे, और भगवान की थोड़ी सी कृपा होगी तो वही साधन भजन अपने आप होने लगता है, रुचि होने लगती है, विषय वासना भी दूर हो जाता है। इसलिए ये तीनों में सब भगवान की कृपा उपलब्ध होता है, तीनों एक साथ होंगे। ये महापुरुष लोग क्या करते हैं, इसी की अनुभूति कर लेते हैं, बस उनको हो जाता है सब कुछ, हम लोग हो रहा है किंतु उपलब्धि नहीं करते हैं। भगवान की भाई ऐसा जो लोग कर सकते हैं, ऐसे गुण जिनके हैं वो लोग भवंति वै भागवत, वो लोग परम भागवत हे राजन, ऐसे परम भागवतों की कृपा से, उनके संग से, उनके विचारों को ग्रहण करने से, अनुवृत्ति करने से, वो जो पहले अनुवृत्ति बतलाया अनुवृत्ति करने से ही परम शांति मुपैति दिव्यम, वो दिव्य माने अलौकिक जो शांति इस जगत में नहीं है, उस अलौकिक शांति, कौन सी शांति? परम शांति। परम माने गोलोक वृंदावन की जो वो रसमयी जो भक्ति है जो सबसे श्रेष्ठ, उसको प्रकाश करते हैं। साधारण ये जो शांति है ना, शांति है ब्रह्मवादियों की, वो तटस्थ है, उसमें कोई लाभ नहीं है। शांति किसको कहते हैं? शांति हो जाएगी तो सो जाएंगे, कष्ट दूर हो गया तो सो गए ना, तो सो गए तो फिर क्या हुआ, जगत से तटस्थ हो गए। इसलिए हम लोग शांति नहीं चाहते। शांति कौन चाहेंगे? जो ब्रह्मवादी ज्ञानवादी, हम लोग शांति एकदम नहीं चाहते। तब उसके चरणों में शांति है जहां वो भाव भक्ति का पराभक्ति हुई, अपने आप शांति तो अपने आप बिना बुलाए चली जाए। ये सनक सनंदन इत्यादि इनको शांति थी, किंतु वो जो सुख है परा सेवा में, कृष्ण की सेवा में, कृष्ण ने कहा अरे क्या बेटा जरा ये पंखा तो ले लो, मर पंखा हमको चलो। ऐसे ही कुछ पैर हमारा कदा हम यमुना तीरे
नमामि,
ये
कदा गंभीर वाचा
गंभीर वाचा नारायण कहेंगे।